ओम शांति। संगम युग में भगवान का बच्चा बनना ये सबसे बड़ा सौभाग्य है, और कोटों में कोई और कोई में ही कोई हम वो भाग्यशाली आत्माएं हैं जिन्होंने भगवान को पहचाना है और भगवान ने उनको पहचाना है। बाबा का बनना ये एक बहुत बड़ी लॉटरी है इस समय की। मैंने भी 1981 में डायरेक्ट बाबा के महावाक्य ही सुने, और मुरली सुनने के बाद तुरंत ये रियलाइज हुआ कि यही गीता का ज्ञान है। कभी कोर्स नहीं किया था और हमारे घर में ही गीता पाठशाला शुरू हो चुकी थी, और तब शुरू हुई थी जब हम हॉस्टल में रह करके पढ़ते थे, लौकिक हॉस्टल में। और वैकेशन में घर आए तो हमारे घर में ही क्लास चालू हो गया था। सेंटर से बहनें आती थी सप्ताह में दो बारी और क्लास कराते थे, तो बहनों का जीवन देखा तो बहुत ही एक आकर्षण हुआ कि कितनी सिंपल लाइफ है उनों की और कितना ऊंचा ज्ञान ये सुना रहे हैं। और अप्रैल में हम ज्ञान में आए थे वैकेशन में, और जब अक्टूबर में मधुबन ग्रुप जाता है बाबा को मिलने के लिए, तो हमने भी दीदी को रिक्वेस्ट किया कि दीदी हमें भी मधुबन जाना है। तो दीदी ने कहा अगले साल भेजेंगे। मैंने जिद किया कि नहीं दीदी, हमें तो अभी ही जाना है। फिर दीदी ने छुट्टी तो दिया क्योंकि बड़ा ग्रुप जा रहा था, और जब मैं मधुबन आ रही थी तो मुझे मधुबन दिखाई दे रहा था कि मधुबन कैसा है। और पहली बार जब मैं आई तो मुझे यही एहसास हुआ कि यहां मैं पहले कभी आई हूं, इस जन्म में तो नहीं आई थी, लेकिन वो शायद पिछले जन्म की कोई स्मृति आ रही थी। दिवाली का दिन था, हमारी टीचर बहन ने कहा कि चलो दादी को गुड मॉर्निंग और हैप्पी दिवाली करने जाते हैं, तो हम गए दादी के रूम में। दादी ने सबको दृष्टि दिया, मैं बड़ी दादी की बात कर रही हूं, प्रकाशमणि दादी की, तो शायद वो रूम में 15 के करीब बहने थी, और दादी ने मुझे देख करके पूछा कि ये कन्या कहां से है। तो हमारी बहन ने कहा, टीचर बहन ने, कि ये दादी ये सूरत की एक गीता पाठशाला की है। दादी जी ने पूछा कि कब से ज्ञान में है, तो कहा कि दादी 6 मास से ज्ञान में है। तो दादी ने कहा लेकिन लगती बहुत पुरानी है। जब ये सुना तो मेरा नशा और चढ़ गया कि मुझे मधुबन अपना नहीं लगा था, लेकिन दादी को भी मैं अपनी लगी थी। फिर रोज ऐसे दादी जी को देखते थे, क्योंकि हमें जो एकोमोडेशन मिला था वो दादी जी के ऊपर के ही कमरे में मिला था, तो सीढ़ी उतरते चढ़ते यदि दादी दिख गई तो हम दादी को ओम शांति करते थे। और इस प्रकार से पहली मुलाकात मधुबन में, और बाबा से मिलने का समय आया। मेडिटेशन हॉल था 1981 में। बाबा के सामने हम 25 कन्याएं सूरत से आई हुई बैठी थी और बाबा हमें वरदान दे रहे थे। और वरदान देते बाबा ने एक क्वेश्चन पूछा कि ब्रह्मा कुमारी बनेंगे या अधर कुमारी बनेंगे। उस समय मुझे अधर कुमारी क्या होती है पता नहीं था, लेकिन मैंने जवाब दिया ब्रह्मा कुमारी बनेंगे। मेरे बाजू में बहन बैठी थी, वो कहे इसे बोलना नहीं होता है। अब मुझे क्या पता, बाबा पूछ रहे थे तो मैंने जवाब दिया। फिर बाबा ने प्रश्न पूछा कि जो ब्रह्मा कुमारी बनेंगी वो विश्व का कल्याण करेगी और जो अधर कुमारी बनेंगी वो परिवार का कल्याण करेगी, कौन सा कल्याण पसंद है। मैंने फिर जवाब दिया विश्व का कल्याण। इस रीति से पहली बार बाबा से मिल रहे थे, लेकिन मैं जैसे कि अपनापन फील कर रही थी। और लाइन में फिर बाबा टोली दे रहे थे। जब मेरा टर्न आया तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा, हमारी गीता पाठशाला वालों ने बहुत याद प्यार दिया है। तो बाबा ने पूछा कौन सी गीता पाठशाला। हमारी दीदी बाजू में बैठी थी, उन्होंने कहा बाबा वो लंदन की गीता पाठशाला है, क्योंकि हमारे परिवार को ज्ञान लंदन की टीचर बहन से मिला और मेरे चाचा चाची लंदन में ज्ञान में आए थे तो वो टीचर बहन को लेके आए थे लंदन से ही, और उन्होंने वहां कोर्स कराया सभी को। तो इस रीति से बाबा से मैं मिल रही थी। उस समय सारा मेडिटेशन हॉल फुल था, लेकिन मैं ऐसा ही महसूस कर रही थी जैसे कि मैं और बाबा ही हैं। फिर बाबा ने कहा सभी को याद प्यार देना और मुझे कहा ऐसे करो, तो मैंने ऐसे किया। तो बाबा ने मेरे दोनों हाथ बूंदी के लड्डू से भर दिया और बाबा ने कहा कि सबको ये बाबा की टोली खिलाना। इस रीति से हमेशा मधुबन हर वेकेशन में मधुबन आ जाते थे। एक बार जब मैं मधुबन आई थी तो बाबा मेडिटेशन हॉल में आए थे और दूसरे दिन मुझे निकलना था वापस जाने के लिए। तो हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ओम प्रकाश भाई जी संभालते थे, तो उन्होंने कहा कि सुबह आपकी ट्रेन है तो आप रात को ही चले जाओ नीचे। तब शांतिवन नहीं था, संगम भवन था। अभी बाबा मेडिटेशन हॉल में बैठे हैं तो कैसे जाएं? संकल्प तो चल रहे थे, लेकिन बड़ों की बात को भी मानना जरूरी था, क्योंकि मैं अकेली जाने वाली थी दूसरे दिन। तो कहा कि तुम अकेली हो और कोई गाड़ियां नहीं है, तुम रात को ही चले जाओ। मैं बड़ी दादी के पास गई, मैंने कहा दादी मैं छुट्टी लेने आई हूं। तो दादी कहती कहां जा रही हो। मैंने कहा दादी कल सुबह मुझे जाना है सूरत, इसीलिए मैं छुट्टी लेने आई हूं, क्योंकि ओम प्रकाश भाई मुझे अभी ही भेज रहे हैं संगम में रुकने के लिए। मेरी दिल तो नहीं है दादी, लेकिन जाना पड़ेगा। दादी कहती ऐसी बात है, ओम प्रकाश भाई को बुलाओ। मैंने भाई साहब को कहा दादी जी बुला रही है आपको। भाई साहब आए और दादी जी ने कहा कि ये कुमारी को तुम अभी क्यों भेज रहे हो। तो कहा दादी उसकी ट्रेन है सुबह, उसको जाना है। दादी कहती सुबह ट्रेन है ना, अभी क्यों भेज रहे हो? तो कहते दादी सुबह कौन ले जाएगा उसको? दादी कहती है दादी की कार उसको छोड़ने जाएगी। वंदर था कि यज्ञ में केवल एक ही कार थी, एम्बेसडर कार थी वो, और कोई कार नहीं थी। लेकिन उस समय में कुछ भी नहीं थी, एक साधारण कन्या पढ़ रही थी, कॉलेज कर रही थी। लेकिन दादी ने मेरी उस समय जो दिल ले ली, उस समय मैंने सोचा कि हम दादी के लिए कुछ करें। फिर सुबह में भाई साहब को भी थोड़ा हुआ कि देखता हूं कैसे दादी की गाड़ी छोड़ने जाती है, लेकिन अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई मुझे छोड़ने की। फिर सुबह में ट्रक जाती है सब्जियां लेने के लिए आबू रोड, मुझे उसमें बिठा दिया। अब मुझे तो जाने से मतलब था, कार में जाऊं या ट्रक में जाऊं, तो मैं चली गई। तो इस रीति से दादी की बहुत बड़ी दिल थी। और जब मैं मधुबन आती थी तो मधुबन में कन्याओं की ट्रेनिंग हुआ करती थी, तो बड़ी दादी मुझे हमेशा कहती थी कि तुम ट्रेनिंग करो, तो मैं मना करती थी कि नहीं दादी मुझे ट्रेनिंग नहीं करनी है, क्योंकि मुझे क्लासेस के आधार से वैराग्य नहीं लाना है। जिस दिन मुझे वैराग्य अपने आप आएगा, मैं किसी को पूछने नहीं रहूंगी। दादी ने कहा ठीक है, तुम खुद दादी के पास आएंगी तब दादी तेरे को स्वीकार करेगी। तो ऐसे ही मैं एक बार 1985 में एमकॉम की एग्जाम देने के लिए अहमदाबाद आई थी, और मेरी एग्जाम पूरी हो गई और हमें बताया कि दादी जी ऑस्ट्रेलिया की टूर करके आ रही है, दादी जी का बहुत भव्य स्वागत है, तो आप जाना चाहेंगी? तो मैंने कहा जी मैं जाती हूं, क्योंकि घर में परमिशन लेने की बात तो थी नहीं, क्योंकि सब ज्ञान में चलते थे। तो मैं अहमदाबाद से मधुबन आई ट्रेन में ही, दादी जी के साथ ही। दादी ट्रेन में ही बहुत करके ट्रैवल करते थे, तो रात की ट्रेन में अहमदाबाद से बैठे, सुबह उतरे ट्रेन में। फिर दादी ने मुझे पूछा कि प्रवीणा कितना पढ़ना है, कब तक पढ़ोगी? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। फिर मधुबन में 4-5 दिन रुकने का प्रोग्राम बनाया था, तो मुझे दादी जी का क्लास जो दादी ने कन्याओं की भट्टी में कराया था वो क्लास पढ़ने के लिए दिया, और वो क्लास का हेडिंग था पढ़ो लिखो कुछ भी करो लेकिन मुझे जवाब दो कल किसने देखा। ये क्लास पढ़ने के बाद मैं तुरंत दादी जी के पास गई और मैंने दादी को बोला दादी मुझे अब सेंटर पर जाना है। दादी कहे कि अभी तो तुम एग्जाम देकर के आई है, वापस घर जाओ, घर वालों को थोड़ी ही पता है कि आप मधुबन आई हो, क्योंकि उस समय तो कोई मोबाइल की सिस्टम थी नहीं, फोन भी गांव में कोई लाइन होती नहीं थी, तो इन्फॉर्म नहीं किया था। तो मैंने कहा नहीं दादी पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें पहले से ही घर से बोल दिया था कि जितना पढ़ना है पढ़ो, सेंटर पर जाना है तो जाओ, शादी करनी है तो भी बता दो कि आपको शादी करनी है, और यदि सेंटर पर भी नहीं जाना है, शादी भी नहीं करनी है, घर में रहना है तो भी हमारी छुट्टी है, लेकिन डिसीजन आपको लेना है। तो अब जब मैं डिसीजन ले रही हूँ कि मुझे सेंटर पर जाना है, तो भी दादी ने कहा कि नहीं, पढ़ाई शुरू किया है तो पूरी करो। मैंने दादी को कहा मुझे पढ़ाई पूरी नहीं करनी है, अब मुझे बाबा की सेवा में रहना है। फिर भी दादी ने कहा कि नहीं, घर जाओ, माँ बाप की छुट्टी लेकर के आओ। और मैं घर गई, माँ बाप को मैंने बताया कि मैं ऐसे जाना चाहती हूँ, तो मेरे फादर ने कहा कि ठीक है, 2 महीना जाकर के रह के देख, आपको अच्छा लगे, आप सरवाइव करती हो वो माहौल में तो भले रहो, कंटिन्यू करो। तो मैं 2 मास की छुट्टी लेकर के वापस मधुबन आई 1985 में, और दादी जी को बोला कि दादी मैं रेडी हूँ, घर से छुट्टी लेकर के आई हूँ। तो फिर दादी ने कहा कि अच्छा, दादी जानकी आ रही है तो मैं तुमको दादी जानकी के साथ रखना चाहती हूँ, तुम सेवा करोगी? तो मैंने तो कहा जी दादी, जो सेवा मिलेगी मैं करूँगी। तो दादी ने कहा अच्छा ठीक है, क्योंकि उस समय 1986 का जो वर्ष था वो यज्ञ की गोल्डन जुबिली का वर्ष था। तो फिर मुझे दादी जानकी लंबा समय मधुबन में रुकने वाले थे, तो मुझे रखा, दादी आए, लेकिन मैं दादी के पास नहीं गई क्योंकि मेरा कोई दादी का इतना कनेक्शन नहीं था, पहचान नहीं थी। तो बड़ी दादी ने मुझे पूछा कि तुम गई थी दादी के पास? मैंने कहा नहीं दादी, क्योंकि मैं दादी मुझे पहचानती नहीं है तो मैं कैसे जाऊं। तो बड़ी दादी ने कहा ठीक है, हम भोजन पूरा करते हैं तब आंगन में तुम रहना, मैं दादी से परिचय कराऊंगी। और 3 बजे के करीब दादियां सब भोजन करके बाहर निकले, मैं आंगन में खड़ी थी। तो बड़ी दादी ने मुझे कहा कि यहाँ आओ, दादी जानकी को बोला कि दादी मैं ये कन्या आपको देती हूँ, लेकिन इन्हें आप ब्रह्मा कुमारी बनाएंगी। दादी जानकी ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा दादी ये ऑलरेडी ब्रह्मा कुमारी है ही। दादी कहती अभी तक तो नहीं है, आप बनाएंगे उसको ब्रह्मा कुमारी। तो मेरा दादी जानकी के साथ सेवा शुरू हुई। मैं कोरा कागज, सेंटर पर भी नहीं रही थी, जो मुझे समझ हो कि बड़ों के साथ कैसे रहा जाता है, लेकिन दादी जानकी के साथ कैसे रहना है, किस रीति से सेवा करनी है। लच्छू दादी मेरी बहुत अच्छी गाइड थी, वो मुझे सिखाते थे कि कैसे दादियों की सेवा करनी है, क्योंकि लच्छू दादी ने बाबा की सेवा की थी, बाद में बड़ी दीदी की सेवा किया, तो वो मुझे सिखाते थे। तो इस रीति से मधुबन में दादियों के साथ, और इंद्रप्रस्थ दादियों का ही घर, छोटे छोटे कमरे, एक कमरे में दादी जानकी जी रहते थे, एक कमरे में चंद्रमणि दादी जी, एक कमरे में जो दादियां आती थी, चाहे वो ऑलराउंडर दादी आते थे, कभी संतरी दादी आते थे, कभी हमारी संदेशी दादी आती थी, जो बड़ी दादियां आती थी वो वहां रहते थे। और एक कमरा पर दादी का था, निर्मल शांता दादी का था। तो दादियां आते थे वहां रहते थे, जब दादियां नहीं होते थे तो वो कमरे बड़ी बहनों को भी दिया जाता था, समझो नियोग की मोहिनी बहन रहते थे। तो इस रीति से, और वहां मैं ही छोटी थी, तो मैं, जैसे सुभाष भाई सुना रहे थे कि मैं बहुत भागा दौड़ी करती थी, दादी जानकी की मैंने नेचर देखी थी कि वो बहुत एक्टिव थे, तो वो हमें भी यही कोई भी सेवा देते थे, 1 मिनट में ये करके आओ, 1 मिनट में ये लेके आओ, तो वो आदत बनी हुई थी फास्ट फास्ट करने की। क्योंकि दादी बहुत फास्ट थे, बहुत एक्यूरेट भी थे, तो मैं हमेशा एक एम रखती थी कि दादी जो कहें उसको दूसरे मिनट में ला करके दो। तो मेरी जैसे कि ट्रेनिंग शुरू हुई दादी के पास, और शुरुआत में तो दादी के पास जो पोस्ट आती थी उसका जवाब देना होता था, और जवाब में तो एक लाइन दादी बोल देते थे, बाकी पूरा इनलेन कैसे भरना है। तो दादी जो क्लास कराते थे वो क्लास में जो बाबा की बातें दादी हमें पक्का कराते थे, जो पॉइंट्स अच्छी लगती थी वो पत्र में लिखती थी, और वो पत्र फिर दादी पढ़ते थे, और दादी फिर बाद में पोस्ट होता था। वो ज्यादा नहीं होते थे, लेकिन मैं क्या लिखती हूं वो भी दादी देखना चाहती थी। और फॉरेनर्स की सीजन होती थी तो फॉरेनर्स सब दादी को मिलने आया करते थे, और उन दिनों में दादी बहुत ऑफिशियल हुआ करते थे। वो टीचर का रूप था दादी का उस समय, और जो भी भाई बहने आते थे दादी का एम रहता था कि उनको मैं समय दूं। तो सारा दिन लाइन लगी रहती थी, जैसे डॉक्टर की क्लिनिक के बाहर में लाइन लगी होती थी, ऐसे दादी की रूम के बाहर भी ऐसे ही लाइन लगी रहती थी। और मैं ये देखती थी कि जो दादी के कमरे में जाता था वो संतुष्ट होकर के, खुश होकर के वापस आता था। एक दिन एक भाई मिलने के लिए आया, और उस समय दादी का भोजन का टाइम हो चुका था, तो मैंने वो भाई को बोला कि भाई आप शाम को आना ना, क्योंकि अब दादी का भोजन का टाइम है और बड़ी दादी इंतजार कर रही है दादी के भोजन के लिए। भाई ने कहा नहीं, मुझे केवल 2 मिनट का ही काम है, फिर भी मैं उसको रिक्वेस्ट कर रही हूं कि नहीं आप शाम को आना। भाई माने ही नहीं, बैठ गए। फिर दादी बाहर आए, वो भाई बैठे थे, तो वो भाई ने दादी को, दादी ने पूछा भाई कुछ कहना है? कहते हाँ दादी, एक क्वेश्चन पूछना है। तभी भी मैं कह रही हूं कि दादी ये शाम को आ सकती है ना? नहीं, पूछो क्या पूछना है। तो भाई ने कोई ज्ञान की बात पूछी। दादी कहती देखो मेरा भाई ज्ञान का प्रश्न पूछने के लिए आया और तुम कहती शाम को आना। तो माना दादी को ज्ञान की बात जो करता था बहुत अच्छा लगता था, ज्ञान के क्वेश्चंस पूछता था दादी को बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि दादी हमेशा ही ज्ञान के ही मनन चिंतन में रहते थे। और मैंने ये देखा कि दादी को एक बाबा दूसरा न कोई, और कोई आधार दादी का नहीं होता था। जैसे आप सबने दादी का वो स्लोगन सुना होगा, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है, हमेशा ये पक्का रहता था। और बाबा की कई बातें जो साकार बाबा ने किया था वो दादी पूरा फॉलो करते थे। जैसे बाबा भी सब खाना खा लेते थे उसके बाद खाते थे, दादियां भी ऐसे ही थे। रात को सब सो जाते थे उसके बाद दादियां सोते थे, सब दादियों का ये नेचर था। मैंने चंद्रमणि दादी का जीवन भी देखा, और कभी भी मैंने दादियों को बिना टाइम का ऐसे ही खटिया में सोते हुए नहीं देखा। चंद्रमणि दादी अपने कमरे में होते थे, कभी भी कमरा खोलो तो दादी हमेशा अव्यक्त वाणी की स्टडी करते होते थे। समय को बहुत वैल्यू दिया है दादियों ने। कभी भी समय इन्होंने ऐसे ही बर्बाद किया हो हमने नहीं देखा। जब दादी जानकी जी लंदन से आते थे तो मुझे बुलाते थे, और दादी जब लंदन चले जाते थे तो मैं सेंटर पर जाती थी। तो एक बार चंद्रमणि दादी ने मुझे कहा कि आप क्यों चली जाती हो, मधुबन में नहीं रह सकती हो। मैंने कहा दादी दादी तो चली गई तो अब मेरे लिए क्या सेवा है। दादी कहती है सेवाधारी सेवा के पीछे नहीं जाते हैं, सेवाधारी के पीछे सेवा आती है। तुम तैयार रहो, सेवा आपके पीछे आएगी। मुझे दादी की वो बात बहुत अच्छी लगी कि हमें अपने आप को तैयार रखना है। हर प्रकार की सेवा यज्ञ में है। कभी कभी मधुबन में मैं रहती थी ऐसे तो मैं एक ही बार भोजन करती थी। चंद्रमणि दादी मुझे पूछती थी तो मैं कहती थी दादी आज कोई सेवा नहीं किया है तो मैं यज्ञ का भोजन कैसे खाऊं, सेवा करूं तो कुछ खाऊं ना, मुफ्त का कैसे खाऊं। तो दादी को भी ये बात अच्छी लगती थी लेकिन फिर भी कहती थी कि नहीं, तुम्हारा भाग्य है जो आप यज्ञ में हो। फिर एक समय ऐसा आया कि दादी जानकी ने मुझे अचानक कहा कि तुम अपनी वीजा निकालो। अभी वीजा यंग और अनमेरिड को मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन विदेश में मेरे लौकिक्स बहुत सारे, वो सब दादी को बोलते रहते थे कि हमें प्रवीणा को बुलाना है। तो दादी ने मुझे अचानक कहा कि आप वीजा निकालो। तो मैंने कहा ठीक है दादी जैसे आप कहो। और उसमें भी मैंने ये समझा कि ब्लेसिंग है। एक बार मैं अव्यक्त बाप दादा को मिल रही थी, पहली बार जब सेंटर पे जाने के लिए आई थी तब भी मैं बाबा को मिली और मैंने बाबा को कहा कि बाबा मैं सेंटर पर जाने के लिए तैयार हूं। तो बाबा ने कहा भय तो नहीं लगता है, बहादुर हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया बाबा को। फिर बाबा ने कहा कि वहां तो 20-25 होंगे, यहां तो कितना बड़ा बेहद का परिवार मिल गया, कितनी खुशी की बात है। जहां भी जाओ जिस देश में भी जाओ अपना ही परिवार है। हिम्मत है बच्चे तो मदद है बाप सदा है ही। जब बाबा ने ये शब्द बोला कि जिस देश में भी जाओ अपना ही परिवार है, तो कईयों को संकल्प चला कि बाबा शायद इसको विदेश भेजना चाहते हैं। लेकिन मुझे कोई संकल्प नहीं था कि मैं कोई विदेश जाकर के सेवा करूं। और क्यों संकल्प नहीं था, क्योंकि मेरे माँ बाप लंदन गए थे और वो लोग जब लंदन से वापस आए तब उन्होंने कहा, क्योंकि मेरी बहन लंदन में थी तो उन्होंने देखा कि इनका कितनी हार्ड लाइफ है। तो मेरे फादर ने आकर के कहा कि मैं मेरी कोई लड़कियों को विदेश नहीं भेजूंगा, इतनी हार्ड लाइफ मुझे नहीं देनी है मेरी लड़कियों को, भारत में रहें और आराम से रहें। तो हमने समझा था कि बहुत हार्ड लाइफ है क्यों जाने का। दूसरा ये भी था कि भगवान भारत में आए हैं तो हम क्यों जाएं। तो दादी ने जब अचानक कहा कि वीजा लेनी है और मैं गुलजार दादी से मिलने के लिए गई, क्योंकि वीजा लेने दिल्ली में गई थी, दादी दिल्ली में थी, तो दादी ने मुझे दृष्टि दिया और कहा कि आप न्यूट्रल होकर के जवाब देना, वो जो प्रश्न पूछे ना, आप अगर इच्छा दिखाएंगे कि आपको जाना ही है तो वीजा नहीं मिलेगी, लेकिन न्यूट्रल होकर के आप जवाब देंगे, साक्षी होकर के जवाब देंगे तो वीजा मिलेगी। तो ये वरदान लेकर के मैं वीजा लेने के भी गई, और मैं ये जानती हूं कि करण करावन हर तो बाबा हैं, हम तो निमित्त हैं, बाबा को यदि सेवा करवानी होगी तो वीजा दिलाएगा। और बहुत क्वेश्चंस पूछने के बाद मुझे वीजा मिली, अमेरिका की भी मिली और इंग्लैंड की भी मिली। तो जाना फिर दादी के साथ ही, तो दादी ने मुझे फ्लाइट में कहा कि वहां मुझे तेरी सेवा की आवश्यकता नहीं है, वहां मेरी सेवा करने वाले बहुत हैं, तो आप जो भी हमारे क्लासेस चलते हैं वहां क्लास कराने के लिए जाना। अब मुझे तो कोई क्लास कराने का अभ्यास नहीं था, हमेशा क्लास तो बड़ी बहनें कराती हैं। तो दादी ने मुझे कहा हमारी बहुत सारी क्लासेस चलती हैं, सेंटर्स है, गीता पाठशाला है, सब जगह पे तो क्लास कराने जाना। तो वो एक जैसे कि बुद्धि चले, क्योंकि क्लास कराना है तो विचार सागर मंथन भी करना पड़ेगा, और मुझे ये नहीं पता कि दादी सबसे फीडबैक ले रहे हैं, क्योंकि दादी फिर जो क्लास में मैं गई होती थी वहां की कोई ना कोई माता से दादी फीडबैक लेते थे कि प्रवीण ने क्या क्लास कराया। मुझे दादी प्रवीण ही कहते थे, प्रवीणा नहीं कहते थे, कभी भी बुलाना होता था प्रवीण ही कहते थे, वो बहुत प्यार था वो शब्द के अंदर। तो इस रीति से हमारी ज्ञान में कितनी गहराई है, क्या क्लास कराते हैं, वो भी दादी को जानना होता था, क्योंकि हम कभी भी दादी के साथ टूर करते थे। पहली बार ही 86 में मैं दादी के साथ टूर पर गई थी, और साउथ इंडिया की टूर थी। अब अचानक दादी ने मुझे कहा कि मैं जब तक आऊं तब तक आप क्लास कराओ। मैं तो बहुत घबरा गई, मैंने कहा नहीं दादी मैं ऐसे क्लास नहीं कराऊंगी। दादी कहती नहीं मैं आती हूं ना 10-15 मिनट में, तब तक तुम कुछ भी बातें सुनाओ, 6 महीना मधुबन में रही है, कुछ तो भरा होगा ना बुद्धि में। अभी दादी को मना करना भी दादी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, तो मैं आज्ञाकारी बन करके गई। फिर भी दादी को बोला दादी जल्दी आना, बेंगलोर की क्लास थी, और क्लास मैंने देखी 1000 की सभा बैठी हुई है, और घबराहट हो गई। फिर भी बाबा का आवाहन किया, बाबा को बोला बाबा मैं हिम्मत रख करके आई हूं, मदद आपकी चाहिए। तो इस रीति से मैं, जिसको कोर्स कराना नहीं आता हो और उसको क्लास कराने के लिए कहे तो वो बहुत बड़ी बात थी, लेकिन दादी के साथ रह करके दादी की कई ज्ञान की बातें सुनते रहते थे, तो मैंने फिर क्लास जब तक दादी आवे तब तक कराई। और जैसे ही मैंने देखा दादी आई मैंने फुल स्टॉप लगा दिया। दादी कहती नहीं नहीं बोलो, मैंने कहा नहीं दादी पूरा हो गया। तो दादी के साथ कहां पर भी हम टूर पर जाते थे तो दादी हम सबको बोलते थे पहले ये सब बोले फिर मैं बोलूंगी, और यदि हम वो क्लास में या वो सभा में दादी की महिमा करते थे दादी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। दादी को हार पहनावे, ताज पहनावे, दादी हमेशा मना करते थे कि मुझे केवल एक फूल दो, ज्यादा खर्चा मेरे ऊपर नहीं करो। तो हमने देखा जितनी महान थी उतनी सिंपल थी दादी। तो दादी इकोनॉमी का अवतार थी, दादी अपने प्रति कुछ भी एक्स्ट्रा रखना पसंद नहीं करते थे। तो दादियों का जीवन हमारे लिए खुली किताब जैसा है कि उनकी जीवन से हम जितना सीख सकते हैं वो हमारे भले के लिए है। कभी दादी ने बैठ करके हमें कोई एक्स्ट्रा ट्यूशन नहीं दिया, लेकिन उनकी जीवन ही गीता थी कि उनकी जीवन से हम सीखते रहे। तो आप सभी अभी दादियों की क्लासेस की यूट्यूब में क्लासेस आती हैं, बुक्स भी बनी हुई है दादियों के क्लासेस की, बहुत अच्छी तरह से अध्ययन करना। जो गैप है कि आपने दादी से पालना नहीं ली है, आपने दादी को देखा नहीं है, वो गैप आप भर सकते हो दादियों की क्लासेस के आधार से अगर हम अपने जीवन को बनाते हैं तो। ओम शांति।